संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। संतानवेवी गाथा चलेगी, पढ़ो गाथा।
उपदिशदा खलु धम्मं जिणबर्भसेण पर्णतम् रे सर्वे गत सत् एक लक्षण विविध द्रव्यों का कह जिन धर्म का उपदेश देते हुए जिन वर देव ने।
कितनी सीधी सरल भाषा में एक बात कही है कि जितने भी सारे पदार्थ हैं उनके अपने अपने अलग अलग लक्षण हैं और वे पूरी तरह स्वतंत्र हैं, फिर भी शास्त्रों में जो सब में पाया जाता है ऐसा एक लक्षण, जिसे सत नाम का एक लक्षण, सत द्रव्य लक्षणम, इस सत नाम का एक लक्षण और जनागम में कहा गया है। उन्हें वो सादृश्य अस्तित्व के आधार पर सभी पदार्थों में एकत्व स्थापित करने वाला ये सत नाम का लक्षण है। देखो अपन टीका पढ़ते हैं। तात्पर्य यह है कि अपने अपने स्वरूपास्तित्व से संपन्न सभी द्रव्यों को मिलाकर एक लक्षण सत ऐसा जिनहर देव ने कहा है। मन सादृश्य अस्तित्व के आधार पर यहां जो सत शब्द है, सत के दो भेद किए थे ना, एक सादृश्य एक स्वरूपास्तित्व, तो यहां सत लक्षण जो कहा है वो स्वरूपास्तित्व के रूप में मत लेना, सादृश अस्तित्व के रूप में लेना। यद्यपि ये मैंने पढ़ा है पूरा, बहुत ही सरल है, बस थोड़ा उपयोग को केंद्रित करके पढ़ो तो इसका बिल्कुल इसके बारे में एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं है। देखो यद्यपि इस लोक में विचित्रता से विस्तारित सभी द्रव्य अन्य द्रव्यों से व्यावृत रहकर अपने अपनी सीमा में रहते हुए विशेष लक्षणभूत स्वरूपास्तित्व से लक्षित होते हैं। ये यद्यपि है, इसके बाद तथापि आएगा। कहते हैं यद्यपि लोक में विचित्रता को इसमें विस्तारित, माने कई तरह के द्रव्य हैं, जीव हैं, अजीव हैं, धर्म हैं, अधर्म हैं, माने अनेक प्रकार के जो द्रव्य हैं वे सभी द्रव्य अन्य द्रव्यों से व्यावृत करने वाले, अन्य द्रव्यों से जो उनको भिन्न सिद्ध करते हैं ऐसे लक्षणों से संपन्न हैं। लक्षण की परिभाषा ना, अन्य से व्यावृत्ति जो करें, शायद राजवार्तक में ये परिभाषा दी है ना, तुम्हारी न्याय दीपिका में पढ़ी होगी तुमने, हेतु लक्षण व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षण। तो कहते अन्य द्रव्यों से अपनी व्यावृत्ति के लिए, अपनी पृथकता स्थापित करने के लिए प्रत्येक का अपना अपना लक्षण बिल्कुल जो स्वरूपास्तित्व के रूप में है वो हरेक में विद्यमान है। माने यद्यपि ये सब विद्यमान है, अब जरूरत क्या थी, कि सवाल जरूरत का थोड़ी है, जरूरत है ये भी बताएंगे क्या जरूरत है, लेकिन जरूरत नहीं भी हो तो सारी दुनिया तुम्हारी जरूरत के हिसाब से थोड़ी चलती है। लोक में जो है वो है, वो तुम्हारी जरूरत हो तो है और नहीं हो तो है। स्वरूपास्तित्व के अवलंबन से, हाँ जी हो गया ना, उत्पन्न होने वाले, नहीं नहीं कहाँ हो गए, ऊपर तथापि सभी द्रव्यों का द्वितीयता के विस्तार को अस्त करता हुआ, अब वो विस्तार है ना, हरेक के स्वरूपास्तित्व का लक्षण है और वो ऊपर उठ रहा है, उभर रहा है सब, तो कहते उसको जरा अस्त कर दो। अस्त कर दो कैसे अस्त किया जाता भैया? अब नए चक्र की क्लास अभी चल रही थी ना, बस गुण गुण कैसे किया जाता है, चुप्पी, उसके बारे में चुप्पी साधना, यही गौण करने का अर्थ है, इससे अधिक कोई गौण करने का अर्थ नहीं है। आज सुबह जो प्रवचन चल रहा था उसमें जो पूछा गया था जिन लोगों से कि क्या है सारांश इसका है, और फिर किसी ने कुछ कमेंट ज्यादा कुछ किया नहीं, कुछ वो कुछ बता नहीं पाया वो लड़का, तो क्या पता कोई था भी नहीं था यहां, क्या था कि था तो क्यों। उसमें तो बहुत अत्यंत स्पष्ट रूप से ये बात कही थी कि किसी भी व्यक्ति की हमें जांच करनी है कि वो सम्यदृष्टि है कि नहीं है, तो कैसे जांच करें, हम कैसे जांच करें, वो सम्यक ज्ञानी है कि नहीं है, इसकी जांच हम कैसे करें। इस बात को बहुत विस्तार से समझाया था जो अत्यंत उपयोगी बात थी, पर हम देखते हैं कि निशा बहुत बिल्कुल शांत है, गालियां देते रहो तो चुपचाप सुनता रहता है, और बिल्कुल किसी से कुछ बोलता नहीं है, और आलू जमी गंद भी नहीं खाता है, जो भी आपको उसमें अच्छाई दिखती हैं उसके आधार पर हमने निर्णय कर लिया कि ये सम्यक दृष्टि है। तो ये सम्यक दृष्टि होता है, ये तुमने निर्णय कहां से किया कि जो ऐसे गुण जिसमें होते हैं, हमने तो सम्यक दृष्टियों के चरित्र शास्त्रों में पढ़े हैं, तो भरत चक्रवर्ती जैसे लोग भी उसमें थे कि जिन भाई पे चक्र भी चलाया था, थोड़ा तुम्हें चार गालियां सुननी तो वो सम्यक दृष्टि होता है, और एक के जवाब चार में दे दिया कि गालियों का जवाब चांटे से दे दिया, क्यों तो वो मिथ्या दृष्टि होता है। सहायक सम्यक दृष्टि राजा सैनिक अभी पहले नरक में हैं, तो उनकी जो पिटाई करते होंगे तो बदले में उनकी पिटाई करते होंगे कि नहीं, अपनी रक्षा करते होंगे कि नहीं, माने जो जो लक्षण शास्त्रों में बताए हैं कि वो तत्व के तत्वार्थ सिद्धांत होना चाहिए, तो उन्हें तत्वार्थ की बात उन्हें है पता कि नहीं, देवशास गुरु की श्रद्धा होना चाहिए तो देवशास गुरु का सच्चा स्वरूप उनके ख्याल में है कि नहीं, भाई ये तो चीजें देखते हैं ना कि चार लक्षण है, चार में से कोई एक हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। वो सम्यक दृष्टि में सभी लक्षण होते हैं अनिवार्य रूप से है? उसमें एक मुद्दे की बात कही थी कि हम चाहे जिसको चाहे ना जैसा घोषित फिरते हैं, तो उसने एक लाइन लिखी नहीं है और तुमने उसके शकल देखी नहीं है, प्रवचन भी सुना नहीं है, तो काय के आधार पर तुमने नक्की कर लिया उसके लिए। माने आज हमें अनंत भगवान महावीर से लेकर अभी तक सैकड़ों आचार्य हो गए हैं, अगले कुंद कुंद ही समय ज्ञानी धर्मात्मा थे, इस बात की हम कैसे कहते हैं, क्योंकि हमने उनका समय सार प्रवचन सार पढ़ा है। अब जिनने आचार्यों ने एक लाइन नहीं लिखी और आज वे हैं नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो समय दृष्टि थे, लेकिन ये भी कैसे कह सकते हैं कि वो समय दृष्टि नहीं थे। तो उनके बारे में जबान खोलना ये समझदारी का काम है। यदि उन्हें हम मिथ्या दृष्टि घोषित करते फिरें, तो हमने सम्य दृष्टि हुए तो एक ज्ञानी का अपमान किया, उसका महापाप आपको लगेगा, और सम्य दृष्टि घोषित कर दें तो हमारे पास कोई आधार ही नहीं है, क्या करें, फिर क्या करें, क्या करें, क्या करना, तुम्हारी कोई ये ड्यूटी है कि हरेक को सम्मा दृष्टि, हरेक को मिथ्या दृष्टि घोषित करते फिरो, कि तुम्हारा जरूरी काम है, कितना जरूरत पड़ गई तुम्हारे लिए इस बात की। तो जब हम आचार्यों में ऐसा नहीं कर सकते, वहां तर्क दिया था सत्तुम मेवासी निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोध वाक, कि हे भगवान तुम ही निर्दोष हो, सर्वज्ञ हो, वितरागी हो, क्योंकि तुम्हारी वाणी युक्ति और शास्त्र के अविरुद्ध है, आगम के भी विरुद्ध नहीं है और युक्तियों से भी वो सही सिद्ध होती है। तो भगवान की भी वाणी थी, उसके आधार पर हमने उन्हें घोषित किया कि ये सर्वज्ञ हैं। जो जो हमारे पास जनवाणी है उसे हमने तो संबंध पत्र कहते हैं कि हम तो तीर्थंकर को भी नहीं छोड़े, उनकी चीज हमारे पास नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं, समझ रहे ना। तो ऐसे ही किसी भी आदमी का जिसका एक वाक्य भी हमारे पास नहीं है, क्यों साहब, ये तो 3 साल से मौन है, एक शब्द भी बोलते नहीं है, इसलिए समझ है कि हमें तो बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो हमें उनकी बात का पता नहीं चलेगा, तो हम कुछ भी घोषित नहीं कर सकते कि ये सम्य दृष्टि है और ये मिथ्या दृष्टि है। जनागम में सम्यक दर्शन के होने के लिए जो चीजें अनिवार्य बताई हैं, उन लक्षणों से हमें उनकी जांच करना चाहिए। इसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि भाई क्या करना चाहिए, बस अपने देख के हमने देख लिया, क्या देख लिया, क्या देख लिया। अपनी लड़की के लिए लड़का देखने गए और देख के आ गए सगाई पक्की कर रहे, तो उन्होंने पूछा भाई लड़का, हाँ अच्छा है, हमने देखा है, देखा है क्या, गोरा भूरा है, बढ़िया है, एकदम अच्छा है, लड़का है, मैंने लड़की नहीं है, देख लिया चीज है। अरे कहां तक पढ़ा ये तो मैंने पूछा नहीं है, क्या करता है ये तो मैंने पूछा नहीं है, स्वास्थ्य कैसा है ये तो मैंने पूछा नहीं है, तो क्या देख लिया, क्या बोलो, तो आप उन्हें मूर्ख कहते हो। अरे तुम्हारी पत्नी तुम्हें मूर्ख कहेगी यदि ऐसा करके आओगे, तो तुम हमारी बात कहते हो, हम कहते हैं तुम्हें, तुम कौन हो हमारे जो हम तुम्हें मूर्ख नहीं कह सकते, तुम मूर्ख हो तो हम मूर्ख कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें मूर्ख कहेगी कि नहीं कहेगी, कि भाई जो लड़की के लिए लड़के में जो चीजें देखना चाहिए, पहले वो तो नक्की करो क्या देखना चाहिए, देखा जाता है, तो सम्यक दर्शन है कि नहीं है ये देखने के लिए क्या देखा जाता है ये तो करो। थे तुम लोग कौन कौन थे सुनने, प्रतिदिन सुनने में हाथ उठाओ, मालूम तो पड़े कितने थे। मैं इतना समझता हूं झूठा हाथ कोई नहीं उठाएगा मेरे सामने, क्योंकि मैं कोई सजा तो देने वाला हूं नहीं, निकालने वाला भी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ सत्य का ज्ञान करना चाहता हूं, नहीं तो मेरे को विकल्प आएगा तो मुझे वहां से उठ के यहां देखने आना पड़ेगा। क्यों, ये महत्वपूर्ण विषय नहीं था, ये उपयोगी विषय नहीं था, ये जीवन में जानने लायक विषय नहीं था, काय के आधार पर नक्की करते हैं, इसे देखने का नाम है कि मुझे बाल थे कि नहीं थे, कि बाल झड़ गए थे कि नहीं झड़ गए थे, कि घुटी चांद थी कि उसमें कोई क्या था, ये सब देखने का नाम है। हम ऋषि को कैसे देखा जाएगा, उसकी वाणी हमें लिखित या मौके को उपलब्ध हो तो हम उसमें इसके आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं। तो कह सब क्या कर रहे हैं आप, जिसकी वाणी ही नहीं है, जिसने लिखा ही नहीं है, बोला नहीं है, तो मैं हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं आप सबसे कि उसके बारे में तुम्हें निर्णय करने की जरूरत क्या है, जो न लिखते हैं न बोलते हैं, तुम्हें तुम्हारे लिए क्या है उपयोग के हैं वो, तुम्हें काय के लिए निर्णय करना है? किसी चीज का निर्णय तो अपनी उपयोगिता के लिए ही किया जाता है ना, कि उससे उनसे हमको कुछ सीखने समझने को मिलेगा तो हम श्रद्धा से देखें उन्हें, इसके लिए किया जाता है ना, तो काय का लाभ लोगे तुम उनसे? हम दर्शन का लाभ लेंगे। क्यों? दर्शन करने के लिए जिन्हें भगवान कम है, अपने मंदिर इतने मंदिर है ना, तो भगवान के दर्शन करो ना। सन्नक ऋषियों के दर्शन का लाभ कहीं बताया हो तो बताओ। एक आध दर्शन स्थिति ऐसी लिखी हो कि जिसमें सम्यक दृष्टियों के दर्शन की बात बताई हो तो मुझे बताओ। सम्यक दृष्टि दर्शन करते हैं, सम्यक दृष्टि दर्शन देते नहीं है। क्या करते हैं? क्यों? अपने भगवान आत्मा का दर्शन करते हैं और अनंत सिद्ध परमेश्वरी का भी दर्शन करते हैं, पंच परमेश्वरी का दर्शन करते हैं, उन्हें वे दर्शनीय नहीं है। क्यों? अभी हम यहां कहें कि जो हमारे यहां विद्वान हैं बहुत उच्च कोटि के, एकदम दर्शनीय, तो फिर दर्शनीय का हम क्या करें? यदि वो हमें कुछ पढ़ाएं, लिखाएं, बताएं, क्यों, तो हमारे लिए उपयोगी है ना। दर्शन करने के लिए तो अपन ने इतनी मूर्तियां ऊपर विराजमान करी है कि नहीं, एक से एक बढ़िया, बिल्कुल बेदाग। जिनके जीवन में दाग ही दाग हैं, ऐसे लोगों को दर्शनी क्यों बनाते हो? यानी बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु थी तो मैंने बहुत गहराई से सुनने की कोशिश की कि ये क्या बताते हैं, लड़कों ने क्या ग्रहण किया, ये बताएंगे लड़के, एक दो लड़के जो भी आप बताते हैं, और फिर वो बताएंगे तो उसमें कमेंट्स करने वाले, कमेंट्स करने वालों पर भी कमेंट्स करेंगे। मैं सब सुनना चाहता था लेकिन आज कोई जल्दी होगी है? और इसलिए कोई चले गए जल्दी, कोई बात नहीं है। लेकिन ये चीजें अत्यंत उपयोगी थी और उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इसलिए मैंने आपको रिपीट करके थोड़ा सा बताया है। अभी अपनी बात तो ये चल रही है कि प्रत्येक द्रव्य में अपना अपना अस्तित्व है, स्वरूपास्तित्व के नाम से वो पूरी तरह स्थित है, फिर भी जैन आगम में सब में कॉमन रूप से पाया जाने वाला एक सत सामान्य नाम का लक्षण भी है जो उसके सादृश्य अस्तित्व को बताता है। यही बात है ना? चलो, इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द है इसमें, ये सर्व पदार्थ परामर्शी है ना, इसमें ही कोष्टक में दिया है। सर्व है परमात्मा, देखा, सर्व पदार्थ पराम, पांचवी लाइन में हिंदी में सर्व पदार्थ परामर्शी माने ये है, सब पदार्थों को स्पर्श कर लेता है, सबको पकड़ लिया जिसने, समझे ना, सब पदार्थों में पर पकड़ है जिसकी। दुनिया का एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें सत नाम का लक्षण नहीं हो, माने जिसका उत्पाद वह द्रव्य नहीं होता हो और जिसमें गुण पर्याय नहीं हो, ऐसा कोई भी पदार्थ इस जगत में नहीं है। ख्याल में है ना? प्रत्येक द्रव्य की सीमा की उपेक्षा करता हुआ, एक तो वो प्रत्येक द्रव्य की सीमा में रहता है, कौन सा, वो जीव का जीव में जो वो के उसे मैं सब में भूल जाता हूं, स्वरूपास्तित्व, प्रत्येक द्रव्य का जो स्वरूपास्तित्व है उसको रहने हमारा अपनी, लेकिन उसकी सीमा को की उपेक्षा, प्रत्येक द्रव्य की सीमा की उपेक्षा करता हुआ, माने उस सीमा पर ध्यान नहीं रखो, उस सीमा की तुम बात करोगे, अपन कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से अलग है, अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार खड़ी है, तो रास्ता बनाओ उसमें से, एक गेट रख लो है? लिखा ना कि समय प्रत्येक द्रव्य की सीमा की उपेक्षा करता हुआ सत ऐसा जो सर्वग्राही सामान्य लक्षणभूत सादृश अस्तित्व है, वह वस्तुतः एक ही होता है, वो सारे विश्व में एक ही है बस। इस प्रकार सत ऐसा वचन और सत ऐसा ज्ञान वचन रूप भी नए होते हैं, प्रमाण होते हैं, ज्ञान रूप भी होते हैं ना। सर्व पदार्थों का स्मरण कराने वाला है, सर्व पदार्थों का स्मरण कराने वाला है माने सर्व पदार्थ परामर्शी है, परामर्श कराने वाला है। इस सादृश्य अस्तित्व का लक्षण क्या हुआ? सर्व पदार्थ परामर्शी, सभी पदार्थों में को अपने में समाहित कर लेने वाला उस सादृश्य का एक ऐसा लक्षण है। अभी वो क्या कहते हैं कि सब टूट गए, सब मिल गए, हमने कितनी मुश्किल से हरेक की सीमाएं कायम की थी, मेरा समझना। हमने सब बताया था कि ये गीत मिथ्या दृष्टि है, ईश्वर जगत का कोई कर्ता नहीं है, कपड़े वाले कोई मुनि नहीं होते हैं, ऐसे हमने सब सब समागे इतनी सीमाएं बांध ली थी क्या? तुम सब में बिल्कुल तुम तो एक शुद्ध बुद्ध वाले कांजी स्वामी वाले वो ये हो, लेकिन तुमने सब तोड़ दी। तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? वो आंदोलन होगा ना कार्य का, सल देखने का, तो उसमें जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या आप भेजोगे तो जाएंगे, भेजेंगे ना, तो थोड़ा उसे तोड़ना पड़ेगा कि नहीं? हम सब एक हैं सर, क्योंकि हम सब भगवान महावीर के भगत हैं, हम चौबीस तीर्थंकरों को मानने वाले हैं, हम उनको वितरागी सर्वज्ञ मानने वाले जितने भी हैं वो सब हम एक हैं। तो इस सर्व जैनी परामर्शी हो गया तो तुम्हारा समय दर्शन तो नष्ट हो जाएगा इसमें, वो जो नकली समय दृष्टि है उनका नष्ट हो जाता है, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। कोई सम्यक दृष्टि हो जाएगा जिसने जो ये भी कहेगा कि सेना मर्मद को भी गीत में छात्र में डाला है, बहु ऐसा किया, पांचवें अध्याय में रख दिया है, ऐसा कहने वाला उसका भी हो जाएगा क्या? कुछ नहीं, ये बिल्कुल अलग चीज है, समझे ना। यानी इससे हम उसके बाहर तो निकल आए लेकिन उसकी मर्यादा टूटी नहीं, हम मुख्य दिगंबर हैं, ये बात में कहीं कोई अंतर नहीं पड़ा आज तक, न आना चाहिए। और हम में यदि ऐसी सामर्थ्य नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। माने हर भारत के नागरिक को भारतीय होना चाहिए कि नहीं, तो भारत के लिए खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं? 10 साल से राजस्थान में रहे तो राजस्थान का कुछ होना पड़ेगा कि नहीं? कोई राजस्थान के हित की बात आएगी तो खड़े होगे कि नहीं? और जयपुर के हित की बात आएगी तो, जयपुर के जैन मंदिरों के हित की बात आएगी तो कितने स्टेज होंगे? और हमको नहीं चाहते हुए भी उनमें से अनेक स्टेजों पर शामिल होना होगा अपनी अपनी हैसियत से। यदि आपकी कोई हैसियत ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आपकी कोई गिनती ही नहीं है, तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। क्यों? जो उन्हें बुलाते हैं ना, बुलाते हैं, अब कहते हम नहीं आते हैं तो मना मना के बुलाते हैं कि आप खड़े हो जाएंगे तो इतने प्रतिनिधि हमारे आगे कहलाएंगे, आप जाओगे तो धक्का मार के निकालेंगे, पूछेंगे तुम जैनी हो, सर्टिफिकेट बताओ। क्यों? ये जैनियों की सभा है, इसमें नहीं आ सकते आप। मेरे कहने का मतलब ये है कि स्वरूपास्तित्व जो समझाया था ना अपना अपना, और परद्रव्य के रंच मात्र भी कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व नहीं, अस्तित्व नहीं, स्वामित्व नहीं, ऐसा समझाया था, वो अपनी जगह पूरा का पूरा कायम है, समझ गए ना। और फिर भी रास्ता खुलता है सर्व पदार्थ परामर्शी, एक जो लक्षण है जिसका नाम सत है, उस लक्षण से सादृश्य अस्तित्व से हम जुड़ते हैं। यदि सभी पदार्थ पदार्थों का स्मरण कराने वाला मन सर्व पदार्थ परामर्शी ना हो तो कोई पदार्थ सत होगा, कोई असत होगा, कोई सत असत होगा, कोई अवाच्य होना चाहिए, किंतु यह तो विरुद्ध ही है, क्योंकि सत ऐसे वचन और सत ऐसे ज्ञान से सर्व पदार्थ परामर्शी होने की बात वृक्ष की भांति सिद्ध होती है। ये भी वही पंच रत्न की स्टाइल आ गई, कि वृक्ष की भांति है। वृक्ष की भांति क्या है बताओ? वो वृक्ष की भांति बताएंगे। वो कहते हैं कि देखो तुम सत्य नहीं मानोगे तो क्या मानोगे? असत मानना पड़ेगा। असत तो है ही नहीं, अपने को असत मानना है क्या? असत नहीं है तो सतासत मानना पड़ेगा, उभय मानना पड़ेगा, नहीं तो आवाज मान माने कोई ना कहीं तो जाके खड़ा होना पड़ेगा ना है? क्या हो तुम? क्योंकि जैन दर्शन में अभाव भावात्मक होता है। एक वाक्य है ना न्याय में, तुच्छा भाव कुछ नहीं होता, भावांतर स्वभाव होता है। कोई जब हम ये कहते हैं नास्ती कहते हैं तो प्रश्न आता है किसकी? नहीं उसी की नास्ती। अरे उसकी नास्ती नहीं है, उसमें किसी पर की नास्ती है, उसकी पर में नास्ती है। नास्ती हवा में नहीं होती। नास्तित्व नाम का एक धर्म है, वो गुण है आत्मा का। धर्म कहो चाहे गुण कहो एक ही बात है, जिसकी पर्याय नहीं होती उसे धर्म कह देते हैं है? जैसा वो अस्ति है वैसा ही नास्ति है, जैसा नित्य है वैसा ही अनित्य है, जैसा ही भेद है वैसे ही, उन दोनों की हैसियत बिल्कुल बराबर की है। ऐसा नहीं कि वो अस्तित्व वाला तो ज्यादा ताकतवर होगा और नास्तित्व वाला ऐसा नहीं, कमजोर नहीं है। देश के अंदर की सुरक्षा अस्ति से होती है और बाहर से सुरक्षा, जैसे अपनी सेना सबका के लिए रखी है अपन ने, पाकिस्तान के लिए, श्रीलंका के लिए, नेपाल के लिए, अमेरिका के लिए, चीना के लिए, ये अपने लिए थोड़ी रखी। अपने लिए तो कहीं सेना बुलानी पड़े तो बहुत दुर्भाग्य माना जाता है कि सेना को भेजना पड़ा वहां शांति स्थापित करने के लिए। माने हम पुलिस के माध्यम से, हम अपने पुलिस के माध्यम की बात नहीं है, कोई डंडे से ही थोड़ी शांति स्थापित होती है। देखो जब ये मस्जिद गिरी थी ना, अब उसको आजकल उसका नाम नया हो गया है विवादस्त ढांचा। ना उसे मस्जिद कह सकते हैं ना मंदिर कह सकते हैं। वो गिरा था तो ये सब बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे, जिसमें अडवाणी भी गिरफ्तार हो गए थे। तो ये बड़े बड़े नेताओं को जेल में रखना था तो कहां रखें? क्योंकि जहां मालूम पड़ता था कि जैसे यहां रखा है तो आसपास की जनता भड़क जाती थी, जेल को घेर लेती, उधमबाजी करती, जो उनकी पार्टी वाले लोग होते हैं ना, तो ये बहुत करना मुश्किल होता है। तो अडवाणी जी को और एक आध आदमी को उनके साथ में ये ललितपुर में की जेल में रखा था। क्या मैं बताता हूं सच्ची घटना। तो वहां का कलेक्टर और एसपी बहुत तगड़े थे, मतलब इतने अच्छे थे कि वो किसी भी कीमत पर अशांति नहीं होने देंगे। तो मतलब कोई जगह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, वो व्यक्ति जो दोनों थे वो इतने अधिक महत्वपूर्ण थे कि वो ऐसा कहा जाता था कि इनकी वजह से यहां अडवाणी जी को जेल में रखा गया। समझ रहे ना आपकी? मैंने वो बहुत अच्छे प्रशासक थे। तो मेरा अहिंसा का व्याख्यान हुआ और उनकी अध्यक्षता में हुआ। दोनों ही आए थे, कलेक्टर भी और एसपी भी, एक अध्यक्ष एक मुख्य अतिथि, एक ऐसा बना था। भाषण हुआ, उस सुनने के बाद उनने जो वहां कमेंट्स किया वो मैं तुमको सुनाना चाहता हूं, बहुत मार में। उनने कहा कि लोग कहते हैं कि हमारी वजह से यहां शांति नहीं। क्या हमारी वजह से? हम क्या कर सकते हैं? हम तो गोलियां चला के लोगों को मरवा सकते हैं। मरने का नाम शांति हो तो कर सकते हैं हम? शांति तो आप जैसे भाषण देने वाले संतों के ऐसे होती है स्थापित। ये उनने जो सर्वश्रेष्ठ माने गए थे प्रशासक, उनने ये बात कही थी। दादा आपको याद हो तो, आप भी थे ना साथ में, तो वहां ये बात कही थी उनने कि इसलिए माना गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि पुलिस और सेना से नहीं रहती है शांति, शांति जिस देश में जितने भी सत्य का उपदेश देने वाले हैं, अहिंसा का उपदेश देने वाले हैं, जिनके उपदेश को जनता सुनती है, मानती है, उन सब की वजह से शांति रहती है। नहीं फिर रेडियो पर उस पुलिस सुपरिटेंडेंट की अपील करवाएं, फिर मुख्यमंत्री की अपील क्यों कराई जाती है, विरोधी नेता की अपील क्यों कराई जाती है, क्यों महात्मा संतों की अपील क्यों कराई जाती है, हैं? यदि हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएं तो मुसलमानों के नेताओं को पकड़ेंगे, नेता माने सभी साधु संत जो उनके होते हैं, क्या बोलते मौलवी है, और हिंदुओं के साधुओं को पकड़ेंगे और उनसे कहेंगे तो भी करा देते हैं शांति। बाद में लोग ऐसा भी कहने लगते हैं कि हिंदू नहीं है, शांति कराई थी। मतलब उनकी बारी में ताकत होती है, वे जरा उकसा दें तो अशांति हो जाए, वे जरा अशांति रहने की अपील करें तो जगत शांति हो जाती है। समझे? तो इसलिए कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखो सर उपस्थित कहां पढ़ रहे थे अपन? हाँ, वृक्ष की भांति। हाँ वाह, क्या हम मुझे मिल नहीं रहा वो। सर्व परामर्शी वृक्ष की भांति सिद्ध होती है। अब वृक्ष की भांति जब सारे वृक्ष है ना, तो नीम का वृक्ष, आम का वृक्ष, शीशम का वृक्ष, तो ये एक इनमें ये सब वृक्ष हैं ना, तो वृक्ष की दृष्टि से सब एक हैं कि नहीं? अब इसमें नीम का, आम का, इनको क्या तकलीफ हुई कि तुम हमको नीम नहीं कहके वृक्ष कहते हो? क्या हम वृक्ष भी कहते हैं, नीम भी कहते हैं, लेकिन जब हम इस एरिए की सफाई करने की बात सोचेंगे ना, तो हम ये नहीं कहेंगे नीमों को काट दो, ये कहेंगे वृक्षों को काट दो। समझ रहे ना? और जब हमको यहां पर अच्छा बाग बगीचा लगाना होगा तो हम ये नीमारोहण नहीं कहेंगे, वृक्षारोपण कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आई? मन ये उपयोगिता है उसकी, वृक्ष की, कि हमें कोई पक्षपात नहीं है आम से, नीम से, किसी से, हमको तो वृक्ष लगना चाहिए। हम ऐसे भेद कर देते हैं, छाया वाले वृक्ष, फलाने जैसे वृक्ष, फल फूल वाले वृक्ष, जैसे सड़कों के किनारे जो पेड़ लगाए जाते हैं वो तो कौन से लगाए जाते हैं, है? छाया वाले। फल वाले क्यों नहीं? जिनके फल खाए जाते हैं वह यदि वे पेड़ लगा देते सड़क के किनारे तो कितने आम पैदा हो जाते, माने खाने वाले कितने फल हमारे देश में पैदा हो जाते, हम विदेश में भी भेज सकते थे, क्योंकि वो जगह बेकार जाती है, कुछ पैदा नहीं हो पाता है। और ये चीजें सब पैदा हो जाती ना, कभी पेड़ तो लग जाते लेकिन सड़क पर हरेक के सिर फूटते, ये बच्चे आम को तोड़ने के लिए पत्थर मारते, तो जो भी सड़क पर जाने वाला होता उसके माथे में लगता। ऐसा ही नहीं, बहुत सोच समझ कर फल वाले पेड़ नहीं लगाना बुद्धिपूर्वक, जो कोई पत्थर मारे ऐसे पेड़ नहीं लगाना, और छाया हो, ज्यादा कूड़ा करकट नहीं फैलाएं, ऐसे भी होते हैं ना, कैसे देखो दिन भर कूड़े कूड़ा पड़ा रहता है, तो ऐसे वो सोच समझ के पेड़ लगाए जाते हैं। तो ऐसा ही कहते हैं कि वृक्षत्व की भी उपयोगिता है, और आम वो वगैरह जो भेद हैं उनकी भी उपयोगिता है। वृक्ष की भांति कहा ना, जिस प्रकार अनेक प्रकार के बहुत से वृक्षों से अपने अपने विशेष लक्षण भूत स्वरूपास्तित्व के अवलंबन से उत्पन्न होने वाले अनेकत्व को सामान्य लक्षणभूत सादृश दर्शक वृक्षत्व से उत्पन्न होने वाला एकत्व प्रवृत्त कर देता है। क्या कह रहा है? देखो हरेक का अपना अलग अलग लक्षण है, तो उसने क्या किया था, इतने भेद खड़े कर दिए थे, उसमें अनेकता पैदा कर दी थी। तो इसने क्या किया वृक्षत्व ने, कि उस अनेकता को तोड़ दिया और एकता पैदा कर दी। अनेकता में तो भेद होता है, झगड़ा होता है, टूट फूट होती है, जो बोलते हैं ना, फूट पड़ गई, और एकत्व में संगठन होता है। लिखा ना, देखो जैसे वो अनेकत्व को सामान्य लक्षणभूत, जो अनेकत्व था स्वरूपास्तित्व के अवलंबन से जो अनेकत्व था, उस अनेकत्व को सादृश्य अस्तित्व के अवलंबन से तोड़ दिया और एकत्व स्थापित कर दिया। ऐसा उल्टा कहेंगे, अभी घबराना नहीं, कि फिर स्वरूपास्तित्व के लक्षण से जो एकत्व तुमने स्थापित किया था उसे तोड़ दिया और फिर उसमें भेद की उपयोगिता है तो भेद किया, तो दोनों तरह से ऐसा होता रहता है। देखो उसी प्रकार अनेक प्रकार के बहुत से द्रव्यों मिलकर अपने अपने विशेष लक्षणभूत स्वरूपास्तित्व के अवलंबन से उत्पन्न होने वाले अनेकत्व को सामान्य लक्षणभूत सादृश्य दर्शक सत्पने से उत्पन्न होने वाला एकत्व पुरोहित कर देता है। शांति से पढ़ो, सब समझ में आएगा। मतलब इतनी अच्छी भाषा में लिखा गया है सर, कि उसमें कुछ भी प्रवचन करने की जरूरत रह नहीं जाती है। अब जिस प्रकार इन्हीं वृक्षों के विषय में, वृक्ष मत बदल देना, क्योंकि अपना वो नियम है ना, कि वो गणित में भी होती है ना, रेखा गणित में, कि वो दो भुजाएं, दो कोण, तो वे बेई के बेई होना चाहिए तब बदल लें, ऐसा नहीं होता है। कि यदि एक दिन में पांच आदमी ये काम करते हैं तो दस दिन में कितने आदमी काम करेंगे, ऐसा बोलना करते हैं ना, तो कोई चीज कॉमन होनी चाहिए ना। तुम समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा नहीं पूछ सकते हैं कि मेरे पिताजी यहां से बड़े मंदिर पैदल चल के आधा घंटे में पहुंच जाते थे, तो मैं यहां से प्लेन से जाऊंगा तो बंबई में कितने में पहुंच जाऊंगा? तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है ना। मैंने एक वो कॉमन होना चाहिए ना, तो ऐसा ही इसमें भी है, एक कॉमन होना चाहिए, नहीं तो वो प्रश्न नहीं बनेगा। दो लक्षण हो गए अपने पास, एक सत्य और एक प्रत्येक द्रव्य का अलग अलग, उसे एक को हम कह नहीं सकते क्योंकि तो अनंत पदार्थ है। जीव का कहेंगे तो चेतन लक्षण, जिसका जो कहेंगे उसके अलग अलग हो गए ना, तो ये दोनों एक को प्रमुख करते हैं तो दूसरे को दबा देता है, क्या कर देता है? गौण कर देता है। गौण कर देता है माने चुप्पी। यदि उसके बारे में हम कुछ बोलते ही रहे, चुप करना है, चुप करना है, तो चुप को तो मुख हो गया है? हमें व्यवहार को बिल्कुल व्यवहार ही है, बिल्कुल ही है, बिल्कुल शुभभाव रंच मात्र भी मुक्ति का कारण नहीं है, चाहे जिस जाति का हो, उच्च कोटि का हो। क्या कर रहे हो? कि व्यवहार को गौण कर रहे हो, ये गौण कर रहे हो कि मुख्य कर रहे हो? बोला निश्चय नहीं के बारे में एक शब्द नहीं बोला, और व्यवहार को गालियां देते रहे घंटे भर, और कहते हमने व्यवहार का, हमने तुमने गौण कहां किया? गौण का अर्थ ही चुप्पी होता है, कुछ नहीं कहना, चाहे पक्ष में विपक्ष में कुछ भी नहीं बोलना, उसका ही नाम गौण होता है। जिस प्रकार इन्हीं वृक्षों के विषय में सामान्य लक्षणभूत सादृश्य दर्शक वृक्षत्व से उत्पन्न होने वाले एकत्व से त्रोहित होने पर भी अपने अपने विशेष लक्षणभूत स्वरूपास्तित्व से के अवलंबन से उत्पन्न होने वाला अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है। कहते घबराना नहीं, हमने एकत्व एकता कर दी तो वो उनके प्रत्येक के जो अपने लक्षण हैं उनसे जो अनेकता है वो खत्म नहीं हो जाती, वो बिल्कुल अपनी जगह खड़ी रहती है। बस हमने गौण कर दिया, गौण कर दिया मैंने, हमने उसके बारे में बोला नहीं, उसे तो बिल्कुल हिलाया नहीं हमने, उसके बारे में कुछ बोला नहीं तो उसे खत्म कर दिया, ऐसा क्यों बोलते हो तुम, है ना? उसी प्रकार सर्व द्रव्यों के विषय में भी सामान्य लक्षणभूत सादृश्य दर्शक सत बने, उत्पन्न होने वाले एकत्व से द्रोहित होने पर भी अपने अपने विशेष लक्षण भूत स्वरूपास्तित्व के अवलंबन से उत्पन्न होने वाला अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है। वो अनेकत्व भी प्रकाशमान रहता है, अनेकत्व को मुख्य करेंगे तो एकत्व भी प्रकाशमान रहता है। ये मुझे घड़ी दिखती नहीं है, ये तुम दो लट्टू लगा देते हो ना यहां से, तुम्हें समय नहीं दिखता, मुझे बहुत ऐसा माथा मार करके लगाना पड़ता है, तो मुश्किल से दिखता है। अब क्या करना चाहिए, ऐसे इनको यहां लगाओ बगल में, समझे, एक आध लगाओ बस, मुझे ज्यादा से मतलब नहीं है, लेकिन ये दिखते नहीं है, अब वो दूर है और ये बगल में ये लट्टू बीच में आ जाते हैं, पता नहीं चलता कितना बज गया, मुझे अभी पता नहीं कितना टाइम है, अभी 20 मिनट है। देखो, उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि जिस प्रकार आम, अशोक आदि अनेक प्रकार के अनेक वृक्षों का अपना अपना स्वरूपास्तित्व भिन्न भिन्न है, इसलिए स्वरूपास्तित्व की अपेक्षा उनमें अनेकत्व है, फिर भी सभी वृक्षों में समान रूप से पाए जाने वाले वृक्षत्व की अपेक्षा सभी वृक्षों में एकत्व है। जब इस एकत्व अर्थात सादृश अस्तित्व को मुख्य करते हैं तो अनेकत्व गौण हो जाता है। अब ये मुख्य गौण की व्यवस्था है, अभी अपने यहां आ गए ना, 114वीं गाथा आएगी ना, 114वीं है ना, वो दिब्बत्थेण निकालो, है ना, दिब्बत्थेण पयत्थेण इसे बोलो, गाथा है ऐसी, हाँ बोलो,
वंतं पजयक्तियेण पुणो अवलियार्ण मणं तत्काले तम्मयत्तारो द्रायसे अनन्यजीव पर्यायसे अनन्यः पर्याय तन्मय द्रव्यसे तत्य समयत अनन्यः।
आध्यात्मिक नय से वस्तु सर्वसमान ऐसी है और पर्यार्थिक नय से ऐसी है, तो दिव्यार्थिक नय को मुख्य करें तो ईश्वर व्याख्यान इसी हॉल में होते थे, कोई आए थे बहुत बहुत बड़े आदमी, तो ऐसे व्याख्यान होते थे कि दिव्यार्थिक नय को मुख्य करो और पर्यार्थिक नय को गौण करो तो वस्तु ऐसी है, तो कहते थे हमेशा दिव्यार्थिक नय को ही मुख्य रखना, पदार्थ नय को कभी मुख्य करना ही नहीं, उसे तो हमेशा गौण ही रखना। कितना क्लियर लिखा है देखो, दिव्यार्थिक नय को मुख्य करना, पदार्थ नय को गौण करना। मेरा जैसा श्रोता बैठा रहता था तो मैंने कहा साहब इसमें नीचे की लाइन में तो यही लिखा है कि पदार्थिक नय को मुख्य करना, दिव्यार्थिक नय को गौण करना, होगा होगा, छोड़ो छोड़ो, जो मैं कह रहा हूं ना ये लिखा ना इसमें कि दिव्यार्थिक नय को ही मुख्य करना, पर्यार्थिक नय को क्यों करना, करने की जरूरत ही नहीं है, ये क्या हुआ है। वहां तो बिल्कुल बराबरी पर लिखा है क्या कि जब एक करना, जब एक करना वस्तु के स्वरूप को समझने की विधि बता रहे हैं, पर्यार से मतलब ही नहीं, पर्याय से तो पद्धति मूढ़ा ही पर समझा हो जाएंगे, पर्याय दृष्टि करते, अरे ऐसे छूते मुसलमान नहीं बनते हैं, घबराना नहीं, वस्तु का स्वरूप समझना, फिर वो हमें अकेले में जाके चर्चा करते कि सब वो ऐसा 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 जो मैंने कहा ना ऊपर कल्याण का वो सही है ना, तो अभी कहना पड़ता ना यहां सही है, वो सही है भी उस अपेक्षा से, तो कहना है बस बस छोड़ो, बाकी छोड़ो बाकी छोड़ो, वो सही है ना, सही है, बस सब बाकी छोड़ो, सही है सही है, कहना अरे क्या सही है। क्या खत्म हो गया तुम तो कहते उस नीचे की लाइन को पढ़ने ही नहीं। इसमें भी समझा रहे ना कि वो स्वरूप अस्तित्व को गौण करना तो सादृश अस्तित्व को मुख हो जाएगा, उसका प्रयोजन अलग है, फिर सादृश अस्तित्व को गौण करना फिर स्वरूप अस्तित्व को मुख्य करना, उसका प्रयोजन अलग है। ये बात हमारी दृष्टि में बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। और ये जो इस गाथा से शुरू हुआ है ना, संतानवी गाथा से, ये 114 तक जाएगा। यही प्रकरण इसी लेन से ही चलने वाला है, रिवाज यही खत्म नहीं हो जाएगी। प्रकरण ही है, कल अपन ने गाथाएं पढ़ी थी, तुमने पढ़ ली इसकी कृपा से। उसमें आया था ना, वही विषय आया था, दूसरा विषय कोई आया नहीं था। इसी प्रकार जीव और पुद्गल, जीव पुद्गल आदि अनेक प्रकार के अनेक द्रव्यों का अपना अपना स्वरूपास्तित्व भिन्न भिन्न है, इसलिए स्वरूपास्तित्व की अपेक्षा उनमें अनेकत्व है। फिर भी सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाने वाले द्रव्यत्व की अपेक्षा सभी द्रव्यों में एकत्व, सभी द्रव्यों में एकत्व है, यही है ना। और जब इस एकत्व अर्थात सादृश अस्तित्व को मुख्य करते हैं तो अनेकत्व गौण हो जाता है। इस प्रकार जब सामान्य सत्पने की मुख्यता से लक्ष्य में लेने पर सभी द्रव्यों में एकत्व की मुख्यता होने से अनेकत्व गौण हो जाता है, तब भी वह अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है। माने जब वो गौण हो गया तब वो खत्म नहीं हो गया, वो पूरी सत्ता से अपनी जगह विद्यमान है। हमने तो समझने के लिए गौण मुख्य किया है। जैसे कि अभी इंटरव्यू लेते हैं ना, एक एक आदमी को बुलाते हैं, उससे सब बात पूछते हैं कि साहब हम उनको ले आया, हमको तो भगा दिया। अरे भगा नहीं दिया, जो उनको लिखना था, तुमसे पूछना था, पूछ लिया, नोट कर लिया। अब हमसे तो 2 मिनट में निपटा दिया था, और उनको तो आधा घंटा तक पूछा, तो उनके ही सिलेक्शन हो जाएगा। तेज मूर्ख को किसने बता दिया जिसे आधा घंटा पूछते हैं है? उसका सिलेक्शन हो जाता है, और 2 मिनट पूछते हैं उसका सिलेक्शन नहीं होता। ऐसा है, उल्टा भी नहीं है। जब तक उसके बारे में जो उन्हें जानना है उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं पूछने वाले, तब तक पूछते रहते हैं। अब उन्हें 2 बातें ही कही, और जो कागज दिए हैं विद प्रूफ, सब प्रमाण, सर्टिफिकेट कॉपियां लगी हैं, और उतने से ही समझ में आ जाता है, तो 2 वाक्य करके ही भेज देते हैं, हो सकता है उसी का सिलेक्शन हो जाता है। और दूसरे से बात स्पष्ट ही नहीं होती है, जब उससे कोई पूछते हैं तो वो जवाब नहीं देता, अच्छा ये बात नहीं तो ये बताओ बेटा, ये नहीं तो ये बताओ, तो आध घंटा तक बात करी, बहुत प्रेम उमड़ा होगा ना सबको अंदर से, है बढ़िया बढ़िया जवाब दे रहा है। अरे जवाब दे रहा होता बढ़िया तो दूसरा प्रश्न ही नहीं करते है? तो तुम लोगों को सुनाते हैं कैसा ना, फलानी गाथा सुनाओ, फलाना ये बोलो, तो आप बोल देते फटाफट, तो चुप रह जाते हैं। नहीं तो वो बोलते हैं, वो शुरू का एक अक्षर बताते हैं क्यों नहीं होता, तो आधी पंक्ति बोल देते हैं, कहते हैं बोल बोल, ऐसा क्यों करते हैं? कि ये देखते हैं कि ना सही शुरू अक्षर से, लेकिन कम से कम याद तो है कि नहीं है, कि हमने पूरी गाथा बोल दी और तब भी वो रिपीट नहीं कर पाता है, ऐसी पोजीशन तो नहीं है, इसलिए समय लगता है। समझ में आया ना, इसलिए कोई समय लगने से कोई महत्व तो नहीं है, है? ऐसा भी होता है कि उसकी बहुत अच्छाई देख करके और हमें बुरा पसंद आ जाता है, तो और बातें पूछते रहते हैं और जानकारी लेते रहते हैं। मैंने समय कम लगा ज्यादा लगा उससे कोई अंतर पड़ता नहीं है। ऐसे ही तुम इसको सादृश्य अस्तित्व को मुख्य करो, स्वरूप अस्तित्व को मुख्य करो, कितना ही करो मुख्य गुण कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस वक्त सामने वाला मर नहीं जाता, वो भी अपनी पूरी सत्ता से वैसा ही का वैसा खड़ा रहता है। इस प्रकार जब सामान्य सत्पने की मुख्यता से लक्ष्य में लेने पर सभी द्रव्यों के एकत्व की मुख्यता होने से अनेकत्व गौण हो जाता है, तब भी अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है। अब ये आचार्य जयसेन ने दूसरे उदाहरण दे देकर के समझाया है, उसकी चर्चा है, थोड़ी और चर्चा होगी इसे पढ़ लेना, और मैं भी इसे पढ़ के आऊंगा अच्छी तरह से, आज भी पढ़ा है, फिर मुझे कुछ रहेगा बताने लायक तो बताऊंगा, नहीं तो अगली गाथा पे चला जाऊंगा।
अविनाशी हो आत्मा।